ये आकाशवाणी है। अब आप निखिल कुमार से समाचार सुनिए। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 संसद से पारित हो गया है। राज्यसभा ने 12 घंटे की चर्चा के बाद आज इसे मंजूरी दी। 128 सदस्यों ने संशोधन विधेयक के पक्ष में और 95 ने विपक्ष में मतदान किया। लोकसभा से यह विधेयक पहले ही पारित हो चुका है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 का उद्देश्य विरासत स्थलों के संरक्षण और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने के प्रावधानों के साथ ही वक्फ परिसंपत्तियों का समुचित प्रबंधन करना है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और वक्फ बोर्ड तथा स्थानीय प्राधिकरणों के बीच समन्वय बढ़ाकर प्रशासन में सुधार लाया जाएगा। विधेयक का उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं, विशेषकर विधवा और तलाकशुदा औरतों की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति में सुधार लाना भी है। इसके तहत वक्फ बोर्ड में विभिन्न मुस्लिम संप्रदायों और महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर बेहतर प्रशासन के लिए बोर्ड को और अधिक समावेशी बनाया जाएगा। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इस अधिनियम से मुस्लिम समुदाय के करोड़ों निर्धन लोग लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है। संसद ने मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 को भी स्वीकृति दे दी है। यह विधेयक मुसलमान वक्फ अधिनियम 2023 का स्थान लेगा। संसद ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की पुष्टि करने वाले सांविधिक प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। राज्यसभा ने आज तड़के इसे मंजूरी दी। ये प्रस्ताव इस वर्ष 13 फरवरी को संविधान के अनुच्छेद 356(1) के तहत मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की घोषणा से संबंधित है। लोकसभा इसे पहले ही मंजूरी दे चुकी है। प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पिछले वर्ष नवंबर से मणिपुर में किसी हिंसा की खबर नहीं है। उन्होंने विपक्ष से इस आरोप का खंडन किया कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन स्थिति से निपटने में नाकाम रहने पर लगाया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री के इस्तीफे के बाद कोई भी पार्टी सरकार बनाने के लिए आगे नहीं आई, इसे देखते हुए वहां राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। गृहमंत्री ने कहा कि मणिपुर में राज्यपाल के रूप में अजय कुमार भल्ला की नियुक्ति के बाद से शांति है। प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत करते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि सरकार मणिपुर में हिंसा रोकने में विफल रही। उन्होंने राज्य में हुई हिंसा की जांच कराने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर अजीत माधव राव ने प्रस्ताव में का समर्थन किया और कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने कांग्रेस सरकार की तुलना में 5 गुना अधिक राशि मणिपुर के लिए दी है। तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन, डीएमके पार्टी के डॉक्टर कनिमोई और एनवीएन सोमो तथा आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने भी चर्चा में भाग लिया। संसद ने विमानन सामग्री हित संरक्षण विधेयक 2025 पारित कर दिया है। लोकसभा इसे कल मंजूरी दे चुकी है। राज्यसभा इसे पहले ही स्वीकृत कर चुकी है। विधेयक में विमानन उपकरणों से संबंधित हितों की सुरक्षा का प्रावधान है। इसमें 2001 में केपटाउन ने स्वीकृत मोबाइल उपकरण अंतर्राष्ट्रीय हित संधि और विमानन सामग्री संबंधी अंतर्राष्ट्रीय हित संधि के प्रोटोकॉल लागू करने का भी प्रावधान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज थाईलैंड के बैंकॉक में बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी स्थित देशों के पहल बिम्स्टेक के 6वें शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस सम्मेलन का विषय है बिम्स्टेक समृद्ध, समायोजी और समावेशी। इस दौरान बैंकॉक दृष्टिपत्र 2030 अनुमोदित किया जाएगा और भावी रणनीति तय करने के लिए बिम्स्टेक गणमान्य व्यक्ति समूह की रिपोर्ट का भी अनुमोदन होगा। एक रिपोर्ट।
बिम्स्टेक बंगाल की खाड़ी में स्थित 7 देशों बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड का एक समूह है। इसके अलावा यह एकमात्र ऐसा क्षेत्रीय संगठन है जो दक्षिण एशिया के 5 देशों और दक्षिण पूर्व एशिया के 2 देशों को एक मंच पर लाता है। बिम्स्टेक वैश्विक जनसंख्या, GDP और बाहरी व्यापार के एक महत्वपूर्ण हिस्से को भी दर्शाता है। भारत बिम्स्टेक के 4 संस्थापक सदस्यों में से एक है। बिम्स्टेक के सदस्य देशों के साथ भारत के घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंध हैं, जो भारत को क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाने में सक्षम बनाते हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी यात्रा के दूसरे चरण में श्रीलंका जाएंगे। श्रीलंका की 3 दिन की यात्रा के दौरान वे राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 80 रन से हरा दिया। 201 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए हैदराबाद की टीम 16 ओवर और 4 गेंद में 120 रन पर सिमट गई। प्रतियोगिता में आज शाम 7:30 बजे लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।